Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki taazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karikram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taaza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ जानकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम सिद्धार्थ.
आप दोनों के साथ साथ सभी सुनने वालों को नमस्कार.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक.
इंडियन स्टॉक मार्केट्स प्लंज ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर. सेंसेक्स ड्रॉप्स बाय 1390 पॉइंट्स. Nifty closes at 23,165. President Draupadi Murmu hails RBI's efforts in making India a global leader in digital payments system. And India and Chile agrees to hold discussions towards a comprehensive economic partnership agreement to expand trade and investment.
नए वित्त वर्ष के पहले कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में हुई अच्छी खासी गिरावट. सेंसेक्स 1390 अंक लौटका. निफ्टी 23,165 दर्ज हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को डिजिटल भुगतान तंत्र में दुनिया का अगुआ बनाने में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों की सराहना की. और भारत और चिली ने कारोबार और निवेश को विस्तार देने के लिए समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. घरेलू शेयर बाजार में आज अच्छी खासी गिरावट हुई. अमेरिका में कल से लागू होने वाले शुल्क से उत्पन्न आशंकाओं के मद्देनजर निवेशकों के बीच चिंता की धारणा बनी रही और इन सब के बीच अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1390 अंक यानी 1.8% गिरावट के बाद 76,024 पर बंद हुआ. अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर 77,487 और न्यूनतम स्तर 75,912 के बीच झूलता रहा. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 353 अंक यानी 1.5% घटकर 23,165 दर्ज हुआ. अंतरदिवसीय कारोबार में ये 23,565 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा था जबकि कारोबार के दौरान ही ये अपने न्यूनतम स्तर 23,136 पर भी आया था. छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में भी बिकवाली तेज रही. निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.86% घाटे में रहा जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.7% की गिरावट हुई. उधर बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.9% घाटे में रहा जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली.
इंडियन स्टॉक मार्केट्स विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर. द फॉल केम एज इन्वेस्टर्स रिएक्टेड टू ग्लोबल मार्केट कंसर्न्स एस्पेशियली द अपकमिंग यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स फ्रॉम टुमारो. The Sensex dropped by 1,390 points or 1.80% to close at 76,024. During the trading session, it fluctuated between the intraday high of 77,487 and a low of 75,912. The Nifty index also tumbled 353 points or 1.50%, ending at 23,165. It touched a high of 23,565 and a low of 23,136 during the intraday. Almost all stocks in the Sensex index ended lower except Zomato, IndusInd Bank and State Bank of India. The biggest losers included HCL Technologies, Bajaj Finserv and HDFC Bank. Mid cap and small cap stocks also faced pressure. The Nifty Mid Cap 100 index closed 0.86% lower, while the Nifty Small Cap 100 index slipped 0.70%. The BSE Mid Cap index was down 0.9%, whereas the Small Cap index managed to rise slightly by 0.2%. Sector-wise, most indices ended in the red, with IT, real estate, and consumer durables stocks falling by around 2% each. Only media, oil and amp, gas, and telecom stocks managed to stay positive. Market volatility also surged. The India VIX, commonly known as the Fear Index, jumped 8.37% to 13.78%. This suggests that investors are increasingly cautious about the market direction. So that Indian equity markets declined for the second consecutive sessions today on Tuesday, with the Sensex and Nifty experiencing significant drop, which we just communicated to listeners as well, primarily affecting the IT and banking sectors. But the reason behind that is the monitoring on the ongoing tariff talks and the sectoral impact.
See, Rajesh, I think the big factor, or the most important factor which has been impacting our stock markets, has been either we call it Trump tariff or we call it reciprocal tariff, I think. And now we are very close to the D-Day, as he calls it, the Liberation Day.
Yeah.
So tomorrow probably, finally, we will see actually...
Result kya hai?
Yeah, so as he's indicated... I think yesterday or day before yesterday, that it won't be an eye for eye. So some kind of we may expect it won't be as harsh as it is being expected, or as he had been saying, making his statements earlier.
And but he also said nobody will be spared.
No, that is that clarity also he's given, that it is going to be across the board. Mm-hmm. And he's been saying across the board people have been harsh to the U.S. Industry or their people, U.S. people of United States. So I think that is the factor which is influenced. Plus, if you look at otherwise also, if you look, see the month of March, if you look even from the American market's point of view, whether it was Dow Jones, NASDAQ or S&P, all of them have not done well. And so even in the last two trading sessions, we saw most of them recovering, but overall, the breadth was not positive. And if you look at Indian stock markets, as a stark to the performance of US markets or the markets in Europe, our markets, I think, were one of the best faring markets in March. I think we have registered a positive of 6.5%. So that is one reason. But as you said, Trump tariff or the reciprocal tariff is the most important reason, which is kind of currently influencing the movement of Indian stock market. Besides that, obviously, yes, there are geopolitical issues, those tensions, as the finance ministry also last week in its monthly economic report also mentioned that geopolitical tension, Trump tariff, all this is going to create upheaval in the coming months. And I think as long as all this, the tariff issue as well as the geopolitical issue, because if you look at on the geopolitical front also, every day we are getting a new story in terms of now the new story is Iran. Plus, I think now Trump is also unhappy with Putin. So all that, so nothing is, we are not seeing any of these issues concluding, or the expectation of conclusion in the near future. So I think, yes, to start with, tariff announcements, if it happens, obviously, at least we will get to know what things are. So that will also kind of give some kind of outlook to how markets would behave in the coming days.
As I said, he said that none of the nations will be spared, not exclusively those with substantial trade deficits. Now, do you think this will trigger a potential global economic slowdown due to trade conflicts?
Rajesh, there is a likelihood because, see, all this kind of, if you are imposing tariff, there will be disruptions in terms of trade, in terms of what kind of output happens. So all those uncertainties and all that is also reflecting in US, in Europe, and also in India. So those kind of disruptions are likely because as the report, even today I was reading, White House, I think yesterday they also came out in the report that India, countries like India is imposing 100% tariff on their agriculture produce, on their pharmaceutical formulations, on their alcoholic beverages. So those kind of things are going to be disruptive in nature. And as you said, it is going to be across the board. As they say, Japan is imposing tariffs of about 700% on certain products. So now the basic, I think whatever the light of the day will only come once these announce what he announces tomorrow. So that is one reason. Otherwise, if we look at our own domestic investors, are obviously, yes, FIIs have pulled out. But in yes, March was an exception again. They've started pouring in money again in the Indian market, but though not substantial. And I don't think Indian markets of to an extent, yes, it impacts FII outflow, impacts our market, but our domestic investors have kind of reposed faith in our own markets and the domestic, our own fundamentals, if you look at India's fundamental in terms of and even a report today by Moody's say that we are going to be the fastest growing economy among the advanced economies, among the G20 countries, because our economic fundamentals are strong, our growth prospects are good. Our inflation trajectory is down. RBI has taken steps to push liquidity in the liquidity deficit, which was there. So they've taken steps to ensure that the liquidity deficit is taken care of. Plus, also the budget, the tax concessions announced in the budget and the policy continuation in terms of capital expenditure by the government. So all those steps are going to, as far as the Indian economy, the demand generation is going to be there, because that was one of the reasons that we were, a lot of suggestions were coming that we need to push demand, that there's lack of demand in the Indian economy. So I think that was the reason a lot of, you know, the tax benefits have been given and they have kicked in from today.
सिद्धार्थ जी, हम आपका ध्यान यानी आज की खबर पर ले चलते हुए समझना चाहेंगे कि इंडिया विक्स यानी जो उतार चढ़ाव की आशंका या कह लें भय है, वो 8.37 से बढ़ के 13.78 पर पहुंच गया. यह कितनी बड़ी आशंका तत्काल नज़र आ रही है, और यदि हम जो हमारे आम श्रोता हैं वो अधिकांश सिप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो उनके लिए ये आंकड़ा या कह लें कि ये इस बढ़ जाना, इसका उतार चढ़ाव इंडेक्स का क्या दर्शा रहा और उन्हें क्या अपना रुख रहना चाहिए?
नहीं, देखिए मनोज, जैसे आपने कहा कि सिप के थ्रू जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक प्रमाइस है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, या मैं तो मार्केट के इन्वेस्टमेंट को भी ये मानता हूँ कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, हाँ, एक ट्रेडर के लिहाज से ये थोड़ा उसके लिए चिंताजनक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपने अपना रिसर्च बढ़िया किया है, आप एक मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कारण है जिससे कि कोई हमें इमीडिएट कोई हमें बहुत हमारे अपने डोमेस्टिक रीजंस हो जिसकी वजह से जो है हमें चिंता करना चाहिए. और अगर आप मार्केट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपनी रिसर्च बढ़िया की है, जो भी फंड आपने चुना है या जो भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तो ये कहा ही जाता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड है, तो कोई ऐसी चिंता की बात है नहीं, मार्केट से आपको रिटर्न मिलेगा. हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है और मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मार्केट में एक तो हम हों आप हों, जो एक आम आदमी है, कभी भी एक तो जब मार्केट, ज़्यादातर मैंने देखा है, महसूस भी किया, जब मार्केट ऊपर होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट उसी समय करते हैं. आज जैसे मार्केट जब नीचे आई, काफ़ी नीचे आई, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है मार्केट ने कहीं ना कहीं बहुत दिन से एक बॉटम के आसपास थी, अभी थोड़ा से ऊपर आई है. मतलब मुझे लगता है अब कोई बहुत ख़राब हो जाए, कल टैरिफ जो है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत ज़्यादा हार्श हो हमारे लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा मार्केट दोबारा नीचे जाए. बट जो लेवल्स, लोएस्ट लेवल्स अभी तक देखे हैं पिछले एक डेढ़ दो महीने में, मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे मार्केट को जाना चाहिए. और तो लोग उस समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब मार्केट में मौका मिलता है। मेरा मानना है कि अगर मार्केट करेक्ट हो रही है तो वो एक नए निवेशक या जो निवेशक हैं उनको और एक मौका मिलता है, आप अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यू पे खरीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने या आपने भी महसूस किया होगा कि लोग जब मार्केट चल रही होती तो न्यूज़ बहुत पॉजिटिव रहती है, हर आदमी मार्केट की बात कर रहा होता है, तो लोग उस समय इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो आपको सही समय पर करें, लंबे समय के लिए करें, सही सेक्टर सही फंड में करें, सही कंपनियों में करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉस होगा।
सो सिद्धार्थ, वी बीन टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स प्लंज ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, वेयर एज इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैड रिटर्न्स ऑफ 6.3%. FIIs turned buyers and the consequent short covering contributed to the rally. Now, we've been talking about these scenarios here, about not talking, but we're thinking what will happen tomorrow, you know, when Trump announces on the Liberation Day tariffs. So let's take two scenarios. If the tariffs are lower than feared, do you think IT and pharmaceuticals will benefit? If, on the other hand, the tariffs are severe, there can be another round of downturn in the market?
No, Rajesh, as I just said, see, I think markets about a month back or month or 45 days back, I think they've seen, I feel personally, they've reached a bottom. Probably, yes, they may stay there for a longer time, probably around these levels or the current levels or a little bit improvement or, you know, kind of range bound at these levels. Till these kind of things are, there is clarity on these issues. As far as you said, if they are not very harsh, yes, I definitely agree. At least pharmaceutical and IT. IT is also getting affected because there is a fear of slowdown in US. The demand slowdown, and because our IT industry is also largely dependent on the United States. Right. And as I think you were there about 15 days back when we were discussing the new theme that is coming out, that there is a fear of US also slowing down. So I think that commentary also this week, as we have entered, I think tomorrow obviously is the important day when tariff announcements comes, and then I think on Friday we'll get a commentary from Jeremy Powell. So that also will give us some kind of idea how future is for in terms of US market, their own inflation, their own growth outlook. So I think this week is going to be crucial. And as you said, if tariffs are not very harsh, obviously, yes. And plus, I also look at it in another way, is that these kind of events also bring out the best in people, best in the country, best in our own industry. So I think any such things happen, I think we will kind of adjust, because we are still, I would say, among the emerging economies, India is one of the best placed countries. Our own debt is largely domestic. We have huge domestic demand driven economy, largely diversified, a large economy. So our own fundamentals are strong. Our we have macroeconomic stability. So I don't see, yes, there will be disruptions, and to a large extent, a lot of it has also been factored in.
So how concerned are you about the IT sector? Because it has 15% decline in March. And you said that in the US also, there is no likely to be low demand.
My concern is, Rajesh, from the announcements, what kind of announcements come out tomorrow? So, and I'm sure Trump will also keep in mind the interest of the United States also. But yes, the way things are, I think we will have to actually wait for the announcements tomorrow, black and white, what comes out. Yes, if they are harsh, obviously there will be impact on our own IT industry. And it is also being reflected, if you see, in the kind of estimates they are giving, the kind of, if you look at the movement of in the share prices also, you would also kind of see people factoring in that kind of a slowdown in the IT sector if the tariff announcement is very harsh.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर मिला जुला रुख दिखा है, हालांकि अधिकांश प्रमुख बाजारों में तेजी भी दिखी है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास 35,626 पर रहा. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में निवेशकों की अच्छी खासी लिवाली से 1.6% की वृद्धि आई. हांगकांग का हिंगसेंग सूचकांक और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 0.38% लाभ के साथ बंद हुए। उधर बिकवाले के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.09% की मामूली नरमी के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां तेजी का रुख था। अंतर दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स लगभग 1% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.65% की वृद्धि थी और लंदन का फुटसी 100 0.57% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था।
US stocks ended lower yesterday. The Nasdaq composite lost 0.14%. The Dow Jones Industrial Average added 1% and S&P 500 slipped 0.55%. Siddharth, from the figures that I just read, it seems the US too is concerned.
Yes, obviously, see, markets, whether in India or in US or in Europe, I think it's all sentiment. And obviously, Trump has been threatening Europe also with tariffs. He's been threatening. Obviously, India is also on the block. So, and as you said sometime back, that he's again reiterated that it will be across the board. We were also kind of negotiating with the US. We have been deeply engaged with them post Trump. Presidency, but I think I still feel India would not be, they wouldn't be as harsh on India as he's been saying or making that kind of comment.
यहाँ पर सिद्धार्थ जी, हम ये समझना चाहेंगे कि एक और मागा यानी अमेरिका को महान बनाने की दिशा में तेज गति से ट्रंप अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहे हैं, चार कदम चल के दो कदम पीछे हटते भी दिख रहे हैं। वैसे में जब अनिश्चितता का माहौल है तो क्या दुनिया के अलग अलग जो ब्लॉक हैं, जैसे हम यूरोप को लें कि यूरोप से सबसे बड़ा कमीशन, यूरोपीय कमीशन के सबसे बड़ा सदस्य मंडल भारत के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए आए थे, इसी तरह दुनिया के विभिन्न देशों में द्विपक्षीय कारोबार अमेरिका को एक किनारे रखकर होता बढ़ता नजर आ रहा है।
देखिए मनोज, अभी जब ऐसी स्थिति में, मैंने जो कहा ना कि इस जब ऐसी स्थितियां आती हैं एडवर्स, तो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, जिसका आपने जिक्र किया। हो सकता है बायलैटरली ट्रेड बढ़ जाए, जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, या हम FTAs करें, या कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स करें, तो इस तरह की चीज़ों का होना बिल्कुल व्यवहारिक है। और मुझे लगता है कि जब एक्चुअली टैरिफ्स इम्पोज होंगी या जब वो अनाउंसमेंट करेंगे, तो हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री भी उस तरह की चीज़ों के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि US का एक बड़ी डिमांड क्या है कि ना केवल वो टैरिफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान ना केवल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हैं या उनके अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं या जो कुछ खास किस्म की जो हाई वैल्यू ऑटोमोबाइल्स हैं, जो उन पर टैरिफ तो लगाता ही लगाता है, साथ साथ बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग या क्वालिटी कंट्रोल, तो उसका भी उनको, उसको लेके भी शिकायत है। तो मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो वो कर रहे हैं कि आप हमको मार्केट एक्सेस दीजिए कि मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को भी, तो मुझे लगता है जो अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिका से टीम आई हुई थी, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक पीछे बैठ के निगोशिएशन भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम भी अपने टैरिफ्स को नीचे लाएंगे, उनको थोड़ी मार्केट एक्सेस देंगे, और हमें भी वो थोड़ा बहुत, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां हमें मार्केट एक्सेस मिलेगी, तो थोड़े देर मुझे लगता है एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा थोड़ा। और मुझे लगता है जहां तक मार्केट्स के लिहाज से इसको देखेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट्स ने बहुत हद तक इसको जो है कहीं ना कहीं अपने फैक्टरिंग किया हुआ है। और इमीडिएट जो राजेश बोल रहे थे कि जैसे इस तरह का इमीडिएट इम्पैक्ट दिखेगा कि 1300, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 दिन में मार्केट उतना ऊपर गई भी थी, फिर नीचे आई, लेकिन कई बार आप देखेंगे, मैं खास स्टॉक्स देख रहा था, तो ज़रूरी नहीं कि इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड कि सारे स्टॉक्स, तो मुझे बार बार लगता है कि अच्छे शेयरों में अगर आप चुन पाएं, आप चुने अच्छे सेक्टर्स में, अभी भी अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं, अच्छे प्राइजेस पे हैं।
आइए आगे बढ़ें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के भुगतान ढांचे को लगातार आधुनिक बनाकर और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 9 दशकों में केंद्रीय बैंक की उल्लेखनीय यात्रा सरकार की दृष्टि और नीतियों के अनुरूप रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के नजदीक पहुंच रहा है, विकसित भारत 2047 मिशन के लिए एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है जो नवाचार अपनाने, अनुकूलन के साथ सभी के लिए उपयोग करना सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने नाबार्ड, आईडीबीआई और राष्ट्रीय आवास बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना करके वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में आरबीआई के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं ने कृषि, लघु व्यवसाय और आवास क्षेत्र में आवश्यक सहायता प्रदान की है।
India and Chile have agreed to hold discussions towards a comprehensive economic partnership agreement, CEPA, to expand trade and investment. MEA Secretary East Periasamy Kumaran made these remarks while briefing the media on the visit of President of Chile, Gabriel Boric Font, to India in New Delhi this afternoon. He noted that the two countries currently have a partial trade agreement with the aim of expanding it into a comprehensive foreign trade agreement, FTA, underscoring that both sides are working to find a balance in securing their interests. Mr. Kumaran said that India's interests include expanding agricultural exports and securing critical minerals. He added that from the Chilean side, the interest lies in exporting some of the agricultural products that are not readily available in the Indian market. Mr. Kumaran said that India has interest in expanding defence exports, underlining that Chile has a deep interest in the defence industrial sector as it believes that it incubates a number of interesting critical technologies that can be used for other applications. Mentioning that Chile is the largest producer of copper in the world and has substantial reserves of lithium and other minerals, Mr. Kumaran said that both sides are interested in further strengthening this relationship. Where do you see the relationship going?
See, I think, Rajesh, as you said, we are looking for to expanding the our trade agreement into a foreign trade FTA, a complete FTA, plus also a CEPA, a comprehensive economic partner. I think some days back, the Indian Union Cabinet, our own government, made a very critical announcement for critical minerals. So I think with that respect, if you see, Chile has a huge copper, especially and lithium.
आइए आगे बढ़ें। देश के कोयला क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 1 अरब टन संचयी उत्पादन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस दौरान ये 104 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि ये इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.99% की वृद्धि को दर्शाता है।
डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव सर्ज्ड टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 23,600 करोड़ रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, registering a growth of 12.04%. Goldman Sachs has projected a positive outlook for BSE Limited following a recent proposal by the SEBI to restrict index options expiry days to Tuesdays and Thursdays. The move aims to improve product differentiations and limit market concentration, which could work in BSE's favor. Oil prices declined today. Brent crude was trading 0.19% down at $74.63 per barrel. WTI crude was also trading almost 0.18% down at $71.35 per barrel when reports last came in.
अंत में सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 89,330 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.24% बढ़कर 1,540 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। एमसीएक्स पर ध्यान दें तो वहां अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.81% बढ़त के साथ 90,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई में आपूर्ति वाली चांदी 0.28% बढ़कर 1,350 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इंडियन स्टॉक मार्केट्स प्लंज ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सेंसेक्स ड्रॉप्स बाय 1,390 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस एट 23,165। President Draupadi Murmu hails RBI's efforts in making India a global leader in digital payments system. And India and Chile agrees to hold discussions towards a comprehensive economic partnership agreement, CEPA, to expand trade and investment. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.